فرشتوں کا نام ہم نے سنا ہے, لیکن ویسے فرشتے تو نظر نہیں آتے ہیں, انوبھوتی ہمیں ہوتی ہے, لیکن ستول روپ میں ایک فرشتہ ہی ہے آدرنیہ جینتی دیدی جی. ان کا ویکتتو, بول, یہ فرشتے کا ہی احساس کراتے ہیں. پونا سے بالیہ کال میں گیان کا بیج پڑا اور اس کی ویل بڑھتے بڑھتے لندن تک پہنچی, اور اب پانچوں مہادیپوں میں سیوا کرنے کے لیے آپ نمت ہیں. آپ نے ساکار بابا کی گود لی و پالنا کے ادھیکاری بنے. پچھلے 45 سالوں سے سمرپت روپ میں سیوائیں دے رہے ہیں. ورتمان سمے لندن میں سیوارت ہے اور دیش ودیش کی ساری سیواؤں کی ذمہ واری سنبھالتے ہیں. دادی جانکی جی کا رائٹ ہینڈ بن کر دادی جی کے انگ سنگ رہنے کا پدما پدم بھاگیا آپ کو پراپت ہوا ہے, اور ایسے آدرنیہ جینتی دیدی جی سے ہم سنیں گے ابھی.
بابا کی کمال ہے کہ ڈراما انوسار ایسے چوٹ بھی کھانا, پرنتو پھر ساتھ ساتھ بابا کی رکشا کی. دادی بالکل کل سویرے گئی احمد آباد اور آج شانتی ون میں واپس پہنچ بھی گئی. قدم قدم پر ایک طرف سمے کی گھنٹیاں بجتی جا رہی اور دوسری طرف بابا کی کمال بھی دیکھتے جا رہے. تو ریلی یہ ایسی ہی سین کہیں جس میں جب سین آئی تو دادی خود تو بالکل ساکشی, پرنتو سبھی کو ایسے ہی لگا ہوگا کہ ڈراما وچتر ہے, پرنتو وچتر ڈراما میں دادی خود اپنا انوبھو بتا رہی کہ میں نے یہ نہیں سنکلپ کیا کہ یہ کیوں ہوا, یہ سنکلپ نہیں آیا, یہ سنکلپ صرف آیا کہ اس میں بھی سیوا سمائی ہوئی ہے. اور ریئلی ایسے ہی دیکھتے رہے دادی کے پاس جو پیار بھرے بابا کی یاد کے ای میلز پہنچتے گئے ہیں, چاہے ڈاکٹروں کی بہت پریم سے جو ملاقات آج سویرے دیکھی, تو کوئی بھی بات ہوتی اپنی ورتی انوسار اپنی درشتی انوسار اس کو کس طرح سے پازیٹو تو کیا بہت شریشٹھ روپ دے سکتے, یہ دیکھنے کو پھر دوبارہ ملا. تو ابھی میں آ رہی تھی یہاں تو دادی نے خاص آپ سب کے لیے تین باتیں یاد دلائی. ایک تو خاص یہ کہا کہ آج سویرے بھی بابا کا اشارہ تھا کہ اپنے دل کو کس پرکار سے بنانا ہوگا. سویرے کی مرلی یاد ہوں گی کہ اپنے دل کو رحم دل بنائیں. اس میں بھی جب کہ بابا کی ہر بات بہت سندر ہوتی تو بابا نے بڑے سندر ڈھنگ سے کہا جس کو گیان کا رس بیٹھتا تو انہوں کو پھر یہ بھی ایک رسنا بیٹھتی, ایک بہت سندر عادت بنتی کہ ہم اپنے دل کو رحم دل بنا کر کے سیوا کریں. تو دادی کا کہنا تھا کہ کچھ مرلیوں کے اندر ابھی دو تین مرلیوں میں بابا نے رحم دل پر خاص بتایا ہے, تو بابا کا یہ جو اشارہ ہے ہم خود اپنے دل میں سما کر اپنے دل کو اسی طرح سے رحم دل بنا کر رکھیں. اور پھر دوسرا دادی کا خاص آپ سب کے پرت یہ سندیش کہیں یا یہ اشارہ کہیں کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سمے نازک ہوتا جا رہا, اس بیچ میں ہمیں ابھی اور کیا کرنا ہے. بابا ساکار مرلی میں اویکت مرلیوں میں بتاتے رہتے ہیں, پرنتو خاص یہ بات ہم دھیان پر رکھیں کہ جو کچھ بیتا उसको यदि हम बाबा के सामने क्लियर करके स्पष्ट करके रखते हैं तो अभी भी बाबा रहम दिल है, बाबा माफ करके सब कुछ समाप्त करके हमें हर प्रकार से मदद करेंगे। परंतु उस बीच में आती है हमारी सच्चाई और सफाई, और यदि अब हम अपने हिसाब किताब को बाबा के साथ क्लियर नहीं रखेंगे तो कौन से समय पर हम अपने हिसाब किताब को समाप्त कर सकेंगे। आज जैसे गाड़ी में आ रहे थे तो उस बीच में कुछ दादी ने विश्व के प्रति कुछ कारोबार की बातें भी की, परंतु साथ साथ फिर एक सेकंड में दादी कहे कि मेरा ध्यान यही रहता कि अंत मते सुगते। तो यदि बहुत काल से ये बात याद हम रखते हैं तो फिर कोई भी समय हम बाबा को तो साथी बना करके चलते हैं, परंतु जो कुछ बाबा के सामने क्लियर करना है वो अब फिर भी जो चांस है अभी हम क्लियर कर ही लेंगे। और फिर तीसरी बात दादी का इशारा कि रूहानियत के लिए हम बाबा के पास आए हैं। आने का मतलब क्या था, हम भगवान की खोज में थे और हम चाहते थे कि हम अपनी जीवन भगवान के सामने समर्पण करें। तो बाबा मिला और बाबा ने हमें रूहानियत की बातें सिखाई है, तो हम ये देखते चले कि कहाँ तक हमारी बुद्धि के अंदर वो रूहानियत की स्थिति बनी रहती, और यदि हमारे बुद्धि में ये ध्यान रहता तो फिर हमारे कर्म में भी वो रूहानियत की झलक नजर आती, हमारे बोल चाल में भी, और खास फिर जो आपसी संबंध है संबंध में हमारी रूहानियत रहती। फिर दादी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जब सच्ची रूहानियत है, इतना ध्यान है, तो फिर कोई भी मनुष्य का हम आधार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक बाबा के साथ ही हमारा ऐसा संबंध होगा जो हमारा सहारा होगा। परंतु दूसरी तरफ सबके साथ बहुत मीठा व्यवहार होगा। कभी कभी कोई ऐसे भी होते हैं जिन्हों का कोई मनुष्य का आधार नहीं लेते, परंतु फिर टोटली सबसे उनों की न्यारी स्थिति होती, अथवा वो जो प्रेम प्यार का व्यवहार हो, नजदीकपन का संबंध हो, वो नहीं हो पाता। तो वो कहेंगे कि हाँ, एक बाबा ही हमारा साथी है, कोई मनुष्य के हम अधीन नहीं है। परंतु मनुष्य की अधीनता की बात अलग, परंतु दूसरी तरफ जो न्यारे भी हो परंतु इतने प्यारे भी हो, जो हम इतना बाबा के नजदीक रहें, जो बाबा हमें प्रेम संपन्न बना करके औरों के साथ भी हमारा प्रेम का व्यवहार चले। तो दादी का जो विचार चलते हैं और हर एक के साथ शेयर करने का सदा ही ख्याल रहता है, वो आज भी दादी अभी शाम को ये बातें बता रही थी और सवेरे खास ये बात कही कि वहाँ पर भी अहमदाबाद में लोटस हाउस में गुरुवार का क्लास कराने जाना था मुरली सुनाने, तो खास बुला करके यही कहे, सवेरे सवेरे ही अमृत वेले के बाद ही कहा कि बहुत समय से अपनी स्थिति को न्यारा और प्यारा बना करके रखते हैं, तो उसी आधार पर फरिश्ता स्थिति का हम अनुभव कर सकते, न्यारा भी रहें परंतु ईश्वर का प्यारा हम बन करके रहें। तो ईश्वर का प्यारा होंगे तो फिर तो सहज दिल को पांव धरती पर नहीं होंगे और हम उस फरिश्ता स्थिति को धारण कर सकेंगे। तो ये सवेरे का दादी का अमृत वेले के बाद विचार था। तो एक तो आपको ये दादी की तरफ से ये बताने थे दादी के इशारे, दूसरी बात आपको खास ये बतानी थी कि जो हम बाबा की मुरली में सुनते थे और अभी भी सुन रहे हैं कि समय कैसे तेज जाता रहा है, और जो बाबा हमें ये बताते थे कि अंतिम घड़ियों के नज़ारे किस प्रकार से होंगे, वो प्रैक्टिकल दो बातें मैं आपके सामने रखने चाहती हूँ। मैंने सोचा था जब मैं पहले ज्ञान सुनती थी और बाबा की मुरली सुनती थी, तो मुझे ये बुद्धि में था कि विदेश में जल्दी ही जिस समय घड़ी आएंगी, बॉम्ब्स फटेंगे, आत्माएं सब उड़ के जाएंगी। परंतु भारत में बाबा ने कई बार बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं का खेल देखेंगे, साथ साथ आप आपसी युद्ध, गृह युद्ध की बातें देखेंगे। परंतु खास इस वर्ष में, वैसे तो धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा था कुछ वर्षों से, परंतु इस वर्ष में दो बातें देखने को मिली है जिससे मुझे लगता है कि मैंने ये बात पूरी समझी नहीं थी कि किस प्रकार के वो घड़ियां आएंगी और कैसे आत्माएं बिल्कुल तैयार हो जाएंगी ये संदेश सुनने की अब घर चलना है। अमेरिका में वैसे तो हम एक तरफ से तो कहेंगे कि वो देश सबसे पहले विश्व में अमीर था, और अभी फिर बेशक अमीर ना कहें परंतु फिर भी सारे विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली देश तो कहेंगे ही। वहां पर जब हरिकेन सैंडी आया तो और स्थानों पर हरिकेन्स आते हैं, कुछ नुकसान होता तो कुछ समाचार मिलता रहता, परंतु जबकि अमेरिका है ही मीडिया का देश, तो फिर एक एक बात जो चलती रही, बहुत कुछ विश्व में सभी वो मीडिया का देखते रहे, और वहाँ की बहनें भी किसी न किसी रीति से कांटेक्ट करके हमको समाचार बताती रहती थी। तो ऐसे स्थान पर जानते हुए हरिकेन आ रहा है, परंतु जिस समय वो घड़ी आई तो उस समय किस तरह से वो पानी बहता हुआ देखा, वो गाड़ियां बहती हुई देखी, हरे को लगा कि प्रकृति किस तरह से आज खेल कर रही है। और ये तो उस एक ही तूफान से कितने बिलियंस का नुकसान हुआ, जिस कारण फिर उस बात को उठा करके एक और टॉपिक है संसार की, जो बाबा की तरफ से इशारे मिल रहे थे, परंतु अभी वो बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स को इतला कर रही है कि इसका कुछ करना चाहिए, और उसका है कनेक्शन क्लाइमेट चेंज, जो मौसम बदलता जा रहा है, मतलब कि अचानक कुछ भी बात हो जाए, बाबा हमें अचानक और एवर रेडी दूसरे हिसाब से कह रहे हैं, न सिर्फ प्रकृति के हिसाब से, परंतु जो कुछ ब्राह्मण परिवार देखता जा रहा उसमें भी हम देखते हैं कि अचानक एवर रेडी कैसे बाबा हमें मंत्र पहले से ही दिया और ड्रामा अनुसार वो बात पक्की होती जा रही। परंतु ये जो क्लाइमेट की बातें हैं, उन्होंने जब ये देखा कि एक ही तूफान से कितना नुकसान हुआ, तो फिर एक सारा ग्रुप है, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि हमको कुछ ये जो CO2 इमिशंस है, ये जो गर्म हवा, दूषित हवा बनती जा रही है, पोल्यूशन की बातें कुछ भिन्न प्रकार से हम सुनते रहे, परंतु गर्माइश शहर के, देश के, सारे विश्व की बढ़ती जा रही है, और उसका कारण जो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज चले हैं, मनुष्यों ने जिस तरह से अपना जीवन चलाया है, लाइफस्टाइल, उस कारण से ही ये सब कुछ हो रहा है। आप सोचो, UN कितने कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं इसी टॉपिक के ऊपर, एक ही टॉपिक पर। अभी ये 18th कॉन्फ्रेंस चल रहा है दोहा में, जिसमें से मैं वहाँ भारत से आकर के यहाँ पहुँची। तो उस कॉन्फ्रेंस में भी यही बातें निकल रही है कि साइंस के हिसाब से सबको वार्निंग मिलती गई है, गवर्नमेंट्स को भी और लोगों को भी, कि यदि कुछ लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आता, जिस तरह से हम चल रहे हैं उस अनुसार, तो प्रिडिक्शन ये है कि कुछ वर्षों के अंदर ऐसे हालत होंगी जो उसको बदली नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने तो प्रकृति की बातें पहले से ही बता दी थी, और उसमें भी कर्म फिलॉसफी की बातें बहुत क्लियरली बताई, परंतु हम जबकि ये बातें अभी बाहर वालों से देखते हैं और सुनते हैं, तो हमें लगता कि बाबा ने हमें तो पहले ही बताया, परंतु अब उनको इसका सलूशन बताएं। तो सलूशन तो ये कि वो अपनी आंतरिक स्थिति को ऐसे मजबूत बनाएं जो ये सब बातें देखते हुए वो हलचल में ना आए और उस एक का सहारा लेकर के रखे। तो पहले जो लोग 5 साल पहले भी बातें नहीं मानते थे, आज वो स्थिति है जो ये सब बातें मानने लगे हैं। कि अंदर की तैयारी करना कितना ना आवश्यक है, और कोई रास्ता मुश्किल ही लगता। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दें, जो अभी परसों ही सुना था। तो कॉन्फ्रेंस में बताया कि यदि गर्मी 4 डिग्री से बढ़ती है, जो आज के संसार की हालत है, पहले कोशिश करते थे कि 2 डिग्री तक न पहुंचे ज्यादा, क्योंकि उसका भी बहुत नुकसान होगा। फिर अभी कहते हैं कि वो तो होगा ही, उसको हम रोक नहीं सकते, परंतु 4 डिग्री तक अभी न पहुंचे, वो अभी कोशिश चल रही है विश्व की गर्माइश एक्स्ट्रा 4 डिग्री न बन जाए। तो उसमें उन्होंने बताया कि चलो हम लोगों के लिए तो कहेंगे कि थोड़ी सर्दी हुई, थोड़ी गर्मी हुई, थोड़ा और हम कुछ गरम डालेंगे या कुछ और हम नहीं डालेंगे, परंतु जैसे अफ्रीका है और जहाँ सहारा डेजर्ट आता उसके नीचे जो देश है, तो कहते हैं कि यदि 4 डिग्री गर्मी बढ़ती है वहाँ, तो उसमें ये संभावना है कि मिलियंस के हिसाब से लोगों का मौत होगा। तो क्या हम लोग इतना भी, हम वो खुद कह रहे थे, क्या हम इतना रहम नहीं कर सकते हैं मनुष्यों के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर, जो हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करने के लिए तैयार है। तो परंतु गवर्नमेंट्स का कोई भी बात में मिलना और कोई बात को इकट्ठा होकर के राय करके स्वीकार करना, यूनिटी में आना, वो तो बाबा ने बता दिया कि उनों के लिए इस तरह से शामिल होना, एकमत होना, वो तो संभव नहीं है। तो मैं देख रही हूँ कि कैसे ड्रामा अनुसार जो घड़ी वो आने वाली है, अभी उसकी तैयारी हो रही है, जिसमें मनुष्य आत्माएं खुद ही कहे कि हाँ अब हमें घर चलना है। कुछ समय पहले ये बातें चली थी कि अंतिम घड़ी लोगों को एक तो परमात्मा के प्रति प्रेम भावना, परंतु साथ साथ घर चलने का भी जो संकल्प होगा वो बड़े प्योर भावना से उनके मन में आएगा। ऐसे नहीं कि डर के मारे या दुख के कारण, क्योंकि हर एक के अंदर, मैंने ये देखा है विदेश में कि कई है जो भगवान को नहीं मानते, आज तक भी कई है, वो मानने के लिए तैयार होंगे जरूर, परंतु आज तक नहीं मानते। परंतु कईयों को भगवान को न मानते भी अपने घर की कुछ कुछ झलक या कुछ कुछ स्मृति आई हुई है, जिस कारण से वो फिर उस आधार पर भी थोड़ा कुछ ज्ञान सुनने के लिए तैयार होती हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जिससे मुझे ये लगता। तो लास्ट संकल्प हर आत्मा का जब घर जाती है एक प्यार का होगा, स्वीट होम। ऊपर हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, बड़े प्यार से मीठे घर की याद आएंगे। बाबा उस दिन बता रहे थे कि मीठा घर मीठी राजधानी, तो अपने मीठे घर की याद होंगी और वो उस भावना से फिर अपनी तैयारी करके सब बातों से छूटकर फिर अपने घर वतन चलेंगे। तो अभी कैसे लोगों का मन में वैराग आ रहा है वो हमको देखने को मिला। एक तो ये अमेरिका की कहानी और यूएन के कॉन्फ्रेंस की, परंतु प्रकृति और यूएन की बातों को छोड़े एक और बात जो कई बारी बाबा ने बताया है, जो जब हम सुनते हैं तो सोचते हैं कि वो घड़ी किस तरह से होंगी। प्रैक्टिकल अभी वो घड़ी स्पेन पोर्चुगल ग्रीस, नहीं तो सबके मन में भावना ये होती कि यूरोप भी बड़ा अच्छा जबरदस्त है और उनों के इतिहास में उन्होंने सारे विश्व पर राज किया है इन देशों ने, कुछ हिस्से पर स्पेन, कुछ हिस्सा इंग्लैंड, कुछ वैसे ग्रीस ने भी विश्व को अपने हाथ में उठाने की कोशिश की थी, सारा इतिहास में वो बातें आती। परंतु इन देशों के लिए तो हर एक को बहुत अच्छी भावना होती कि ये देश बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है। परंतु इन्हीं देशों में अभी स्पेन में मैं करीब 6 दिन थी, तो वहाँ पर ये बातें कहानियाँ सुनने को मिली कि जॉब्स नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना कुछ भविष्य का कुछ नज़ारा नहीं नज़र आ रहा। तो अभी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इन देशों की, जो आर्थिक समस्याएं है, पहले जो नहीं थी अभी वो स्थिति बन गई है। तो ड्रामा अनुसार वो बातें भी हम देखते जा रहे हैं कि कैसे उससे भी मनुष्यों को वैराग की वृत्ति बनती जा रही, ताकि वो आत्माएं कुछ अपना और सोचे, कुछ अपना और आंतरिक तैयारी करे। तीसरी बात जो मुझे बतानी थी, ये तो थोड़ा संसार के समाचार की बातें बताई, परंतु तीसरी बात ये मुझे बतानी थी कि संडे के दिन मैं लंदन में यूथ ग्रुप के साथ बैठी थी। आजकल यूथ ग्रुप सब तरफ बहुत पावरफुल हो गया है, पावरफुल ज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से उनका सिस्टम बना हुआ है पालना का, तो सब तरफ बहुत अच्छा संगठन होता। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या आप कहेंगे कि आपने बाबा की कमाल देखी। हम मिरेकल्स शब्द तो नहीं यूज करते, परंतु दूसरी तरफ कहेंगे कि मिरेकल भगवान का जादू का खेल, या ये भी लोग कहेंगे कि सिद्धि, कई प्रकार की सिद्धियां। तो शब्द कुछ भी कहो, परंतु उन्होंने का ये शब्द था कि आपने कुछ इस तरह के भगवान के आश्चर्यजनक बातें देखी है जिससे आपका विश्वास और मजबूत हुआ है। मैंने कहा जब मैं ज्ञान में आई तो साकार बाबा को देखा, और बाबा तो प्रैक्टिकल उस समय तो फरिश्ते ही नजर आते थे। जब बचपन में मैं बाबा को देखती थी तो उस घड़ी तो बाप के रूप में बहुत प्यार की पालना लेते रहे, परंतु जब मैं थोड़ा ज्ञान समझा और फिर 18 वर्ष की आयु में मैं जून 68 में मधुबन आई, तो उस समय ज्ञान की दृष्टि से बाबा को देखा। और जब उस दृष्टि से बाबा की मुलाकात हुई और बाबा से दृष्टि ली, तो उस घड़ी ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था कि शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा कार्य कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा उन्हीं दिनों में जून 68 में ही मैं कहेंगी अपनी फरिश्ता रूप को धारण कर चुके थे। तो इसी धरती पर रहते बेशक व्यक्त शरीर था, परंतु बाबा तब से ही, उससे पहले भी हो सकता, परंतु मैंने तब से देखा कि बाबा बिल्कुल व्यक्त में होते भी अव्यक्त, जो आज बाबा हम सबको चाहते हैं। और तब से मैंने देखा कि ज्ञान की शक्ति एक वंडरफुल शक्ति है, जिससे कैसे जीवन परिवर्तन होता। तो पहले तो ज्ञान की कमाल देखती थी कि ज्ञान से कैसे बुद्धि का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन। परंतु फिर बाद में जैसे सेवाएं विदेश में शुरू हुई और सेवा का पाठ देखते चले, तो हम खुद कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि किस प्रकार से बाबा की सेवाएं विश्व में चलेंगे। हम तो सोचते थे कि चलो थोड़ी बहुत आत्माएं निकलेंगे, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि जो आत्माएं कन्वर्ट हो गई है वो वापस बाबा के पास जरूर आएंगी, परंतु वो जो पहले आत्माएं निकली और आज तक भी आत्माएं जो निकल रही है, वो खुद निमित्त बन करके विश्व के 130 देशों में सेवाएं करेंगी, ये कभी मैंने रूपरेखा सोचा ही नहीं था। ये भी मैं सुनती थी साकार मुरली में, साकार बाबा के द्वारा भी सुना कि बाबा का संदेश विश्व के कोने कोने में जाएगा, परंतु प्रैक्टिकल उसका ढांचा किस तरह से बनेगा, ये लौकिक हिसाब से, लॉजिकल हिसाब से मैंने कभी सोचा नहीं था। तो अब जबकि मैं देखती हूँ कि एक एक देश की वंडरफुल कहानी है कि कैसे बाबा ने किस आत्मा को चुना और कैसे उसके द्वारा अपना बाबा ने कार्य कराया और कैसे एक आत्मा से अनेक आत्माओं को कलम लगता गया, तो ये बिल्कुल मिरेकल की बात है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का काम नहीं है। वैसे तो आप भारत की भी सेवाएं देखो, अभी पिछले सप्ताह मुझे साउथ इंडिया में 2-3 जगह पर जाने का मौका मिला, मदुराई में, कोचिन में, चेन्नई में, और एक एक स्थान में, चेन्नई में तो मैं 3 साल पहले भी गई थी, परंतु कोचिन और मदुराई में मैं 22 वर्षों के बाद गई। तो उस समय की रूपरेखा और आज की रूपरेखा बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। और बाबा का कार्य वो जब हम देखते हैं कि कैसे चल रहा है, कैसे फैला है, तो ये बिल्कुल मिरेकल की बात है। क्यों? क्योंकि बाबा का हर बात निराली, बाबा की हर सिस्टम निराली, बाबा का हर कार्य भिन्न। विदेश में तो जब कार्य शुरू हुआ था तो सभी ने कहा था, जब पहला डेलीगेशन गया, कि आप फ्री करेंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, वो समझेंगे कि जो चीज़ आप ऑफर कर रही हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस समय जो डेलीगेशन आया था विदेश में, उन्होंने भारत में उन दिनों में ईमेल्स फैक्सेस दिए थे, ये है 1971 की बात, तो उन्होंने भारत में वो मैसेज भेजा और बाबा से मधुबन में दादी जी ने बाबा से प्रश्न पूछा कि ये विदेश में अभी ये प्रश्न आ रहा। तो बाबा ने कहा कि चाहे देश है चाहे विदेश है, जो बाबा का कार्य जिस प्रिंसिपल से बना हुआ है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, तो उसी अनुसार ही कार्य करना है। तो पहले तो ये प्रश्न उठा, फिर नेक्स्ट प्रश्न उठा कि क्या विदेश में लोग सवेरे क्लास में आएंगे। तो जब दादी जानकी विदेश में आए तो दादी ने तुरंत ही कहा, मुझे तो सवेरे मुरली सुनानी है, फिर 2 हो 4 हो 10 हो जितने भी होंगे, मैं तो सवेरे मधुबन के टाइम टेबल अनुसार मुरली सुनाएंगी। तब तक मुझे लगता है कि विदेश में सवेरे का क्लास अच्छी तरह से पूरा कहाँ पर भी चालू नहीं था, परंतु दादी के पहुंचने से ही नेक्स्ट डे सवेरे क्लास चालू हो गया। और आज विदेश में भी सब तरफ सवेरे का ही क्लास, और अभी तो कहेंगे कि यदि सवेरे का क्लास नहीं है तो उसको ब्राह्मण ही कहना मुश्किल होता है, संभव ही नहीं। तो कैसे बाबा ने सब आत्माओं की बुद्धियों को टच किया और उनों के अंदर वो धारणाएं, वो ज्ञान की समझ, जो वो अनेक और आत्माओं की सेवा करके अपने आप ही मशीन चल रही है, अपने आप ही कार्य बढ़ता जा रहा। दादी अब भारत में बहुत समय बैठती है तो भी वहाँ का कारोबार भगवान चला रहा अपने आप ही, जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा ने नियम बताए हैं, उस आधार पर सब कुछ चल रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो ज्ञान को समझने से कौन सुना रहा वो निश्चय पड़ता, परंतु दूसरा बाबा की सेवा देख करके वो भी हम देखते हैं तो भी हमारा निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाता, क्योंकि बिल्कुल क्लियर पता चलता कि मनुष्य का कार्य नहीं, एक भगवान की कार्य ये कर सकता। तीसरी बात मैं बतानी चाहेंगी कि जितना जितना हम स्वयं का परिवर्तन देखते जाते हैं तो उससे भी पता चलता कि भगवान की शक्ति ये काम कर रही है। क्यों? क्योंकि खुद को जानना एक तरफ तो कहेंगे इतना सहज नहीं है, तभी सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत बड़ी टॉपिक आती है, परंतु वैसे दूसरे हिसाब से कहेंगे मुझे अपनी जीवन कहानी मालूम होती और किसी को भी हमारी डिटेल की जीवन कहानी का नहीं पता होता। जो कुछ हमने किया, हमने जीवन बिताए, हमारे अनुभव है वो मुझे मालूम। फिर सेल्फ रियलाइजेशन में न सिर्फ आज के हमारे जीवन कहानी, परंतु बाबा तो 84 जन्मों की जीवन कहानी की रियलाइजेशन कराते, परंतु अब भी जो हमारी जीवन कहानी है मैं जानती हूँ और भगवान जानता, और उस बीच में कितनी हमारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कुछ भी कहो, और कैसे हम देखते हैं कि एक तो अपना बाबा में विश्वास और दूसरा अपना दृढ़ संकल्प और तीसरा अपना पुरुषार्थ, तीनों ही बातों की कमाल होती। यदि तीन बातें ये इकट्ठी न होती तो परिवर्तन नहीं हो पाता। बाबा की मदद तब मिलती जब हमारा दृढ़ संकल्प होता। हमने दृढ़ संकल्प न रखा होता परिवर्तन का तो बाबा की मदद कहाँ हमें पहुंच सकती। तो अपना दृढ़ संकल्प, बाबा की मदद, परंतु फिर अपना लगातार पुरुषार्थ। तो जब ये तीनों ही बातें इकट्ठी होती तो फिर बाबा का जादू का खेल देखते कि जो हम खुद भी सोचते थे कि इस बात का परिवर्तन करना इतना सहज नहीं है, ये तो बहुत हमारी गहरी आदत है, परंतु ये तीन बातें रख करके फिर हम देखते जाते कैसे बाबा उसको भी परिवर्तन करता जाता। और फिर साथ साथ बेशक हमें खुद भी पता नहीं था कि हमारे अंदर गुण क्या है, मैं समझती कुछ कुछ को शायद अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, परंतु बहुत करके आज के समय अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही चलता। क्यों? क्योंकि जब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता, दूसरा कोई व्यक्ति है लौकिक हिसाब से तो मेरे पास जो कुछ है दूसरा कोई होगा उसके पास अधिक होगा ही जरूर, तो वो कॉम्पिटिशन फिर हो जाती है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती जिसमें इनसिक्योरिटी होती, अपना कुछ वो आत्मविश्वास नहीं होता। एनीवेज स्थूल बातों में आत्मविश्वास होगा भी नहीं, परंतु कहने का मतलब कि वो इनसिक्योर फीलिंग सदा रहती। परंतु बाबा कैसे अपनी याद की शक्ति द्वारा जो कुछ अपने अंदर गुण थे, छुपे हुए थे, हम खुद भी नहीं जानते थे छुपे हुए थे, उसको कैसे इमर्ज करके बाबा फिर सेवा में यूज कर रहे हैं, या जो कुछ लौकिक हिसाब से भी गुण थे परंतु उसमें कुछ न कुछ फिर कमजोरी भी मिक्स थी, वो भी बाबा ठीक करके कैसे वो भी गुण वो कलाएं बाबा यूज करते जा रहे हैं सेवा में, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन, हमारा भाग्य बनता, परंतु साथ ही साथ उसे देखते हैं कि एक ज्योत से अनेक ज्योत जगी जाती और बाबा का कार्य बहुत फास्ट चल रहा। जो बाकी अंतिम घड़ियों में बाबा को कार्य करना है, कराना है, संदेश देने का, वो मशीन भी बिल्कुल तैयार है। अभी मैं एक मीडिया के भाई के साथ बैठी थी तो मैंने कहा अभी कोई बात का संदेश विश्व में पहुंचना है कितना टाइम लगता, तो उस भाई ने कहा मिनट्स के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर ही कोई भी बात विश्व में फैल जाती। तो आप सोचो जो सेवाएं हम कर रहे हैं उससे हमारा भाग्य बनता, परंतु जो कुछ अंतिम घड़ी विश्व को संदेश मिलना है वो तो बाबा अपने आप ही करा ही लेगा, मीडिया तैयार है, वो कर ही लेंगे। परंतु बाकी ये जो अभी बाबा का फिर से बहुत बहुत हम सबके ऊपर मेहर है, कहें रहम है, बाबा फिर हमसे मिलने वाले हैं कल, तो उसके लिए हम इतना दिल में अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बाबा ने इतना सब कुछ दिया है। 43 वर्ष दादी ने ये सेवा हम सबकी की है, बाबा का रथ हो करके हम सबके लिए बाबा से मुलाकात करने के लिए दादी निमित्त बनी है। 43 इयर्स कितनी सेवाएं हैं। उससे पहले तो जो दादी ने खूब सेवाएं की और अभी भी दादी भिन्न भिन्न प्रकार से खूब सेवाएं कर रही है, परंतु 43 इयर्स की ये अव्यक्त रथ बनकर बाबा की अव्यक्त मुलाकात हम सबको कराना, ये तो कितनी बेहद की सेवा कहेंगे। तो बाबा हमको सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है। तो कल हम बाबा को अपनी उस स्थिति से मुलाकात करें, एक तो दिल से बहुत बहुत थैंक्स, परंतु अपने जीवन का प्रैक्टिकल सबूत बाबा के सामने रखें कि जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया था उसका हम प्रूफ देवे। ओम शांति।